नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से 11 जनवरी 2019 के इस बुलेटिन में शामिल है। सीरिया में जारी हिंसा का आम लोग बन रहे हैं निशाना, यूएन शरणार्थी एजेंसी मुहैया करा रही है विस्थापितों को मदद। म्यांमार के राखिन प्रांत में सुरक्षा बलों का जमावड़ा बढ़ने से हिंसा भड़कने की आशंका। कांगो में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों पर विवाद के बीच शांति और संयम बनाए रखने की अपील। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूरे कर रहा है अपनी स्थापना के 100 साल। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाकों में हो रही लड़ाई में आम लोग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं और लोग विस्थापन के लिए मजबूर हैं। सीरिया के देर ए जोर में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को हराने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। जिनीवा में पत्रकारों से बातचीत में यूएन एजेंसी के प्रवक्ता आंद्रेज महसिच के अनुसार, कभी इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले हाजिन इलाके में पिछले कुछ महीनों में लड़ाई और हवाई हमलों के चलते 25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान की तलाश में विस्थापित होना पड़ा है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। शरणार्थी एजेंसी ने लोगों को सुरक्षित निकल जाने के लिए रास्ता दिए जाने की अपील की है, लेकिन हाजिन में अब भी हिंसा प्रभावित इलाके में 2,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जो लगातार बदतर होते हालात में रहने को मजबूर हैं। अपने साझेदार संगठनों के साथ काम करते हुए शरणार्थी एजेंसी की टीम अकेले या परिवार से अलग हुए बच्चों और घायलों को चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के प्रयासों में जुटी है। म्यांमार के हिंसा प्रभावित राखिन प्रांत में फंसे हजारों लोगों तक पहुंच पाना संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता बना हुआ है। अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना में झड़पों के बाद वहां सुरक्षा बलों का जमावड़ा बढ़ रहा है। हाल ही में 13 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के बाद हिंसा भड़कने की आशंका जताई जा रही है। म्यांमार में मानवीय राहत मामलों के समन्वयक क्न्यूट ऑस्टबी ने सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने पर संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण ढंग से रास्ता तलाशने की अपील की।
We regret very much this loss of life. We express sympathies and condolences to their families. But for what is going to happen now, we appeal to all sides. Take into consideration the situation of the civilian population and to look at how a peaceful solution can be found.
2017 में राखिन प्रांत में भड़की हिंसा के बाद प्रभावित लोगों तक पहुंचना मुश्किल है। हिंसा के चलते रोहिंग्या समुदाय के लाखों लोगों ने बांग्लादेश में शरण ले ली थी। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अगर फिर से बड़े पैमाने पर हिंसा या लोगों का पलायन होता है तो उसे संभाल पाना चुनौतीपूर्ण होगा। ओस्टपी ने भरोसा दिलाया कि उनकी टीम राखिन में स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और मानवीय मदद पहुंचाने के प्रयास जारी रहेंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में लंबी देरी के बाद हुए राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव आयोग के मुताबिक विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार फेलिक्स त्शिसेकेदी ने जीत हासिल की है, लेकिन अन्य दलों ने चुनाव नतीजों पर एतराज जताया है। विपक्षी उम्मीदवार मार्टिन फयालू ने परिणाम को खारिज कर दिया है। चुनाव नतीजों पर विवाद के चलते हिंसक प्रदर्शनों के होने और अशांति फैलने की आशंका जताई जा रही है। जारी तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की कांगो के लिए विशेष प्रतिनिधि लेला जिरोगे ने हिंसा घटनाओं की निंदा की है और संवेदनशील समय में शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कांगो के लिए आने वाले दिन अहम हैं और चुनाव नतीजों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जिसके बाद ही आखिरी नतीजे सामने आ सकेंगे। सत्ताधारी पार्टी के हारने की स्थिति में कांगो की स्वतंत्रता के बाद 60 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता का हस्तांतरण होगा। ग्वाटेमाला में भ्रष्टाचार और दंड मुक्ति के खिलाफ गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग कई विकल्पों पर विचार करते हुए अपना काम जारी रखने का रास्ता तलाश रहा है। सोमवार को ग्वाटेमाला सरकार ने एक तरफा निर्णय लेते हुए आयोग को बंद करने का फैसला लिया था, जिससे बाद में देश की संवैधानिक मामलों की अदालत ने ठुकरा दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने ग्वाटेमाला सरकार के इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए उस पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। यूएन प्रवक्ता स्टेफान जजेरिक ने बताया कि महासचिव गुटेरेश आयोग के काम का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उन्हें आशा है कि तय समझौते के अनुसार ग्वाटेमाला सरकार से कर्मचारियों को पूरा सहयोग मिलता रहेगा।
As you know, the Secretary General has and continues to support the work of the Commission and expects the Guatemalan government to provide the Commission with all the assistance necessary for the discharge of its functions and activities, including the freedom of movement of its staff and throughout Guatemala, as provided in the agreement.
पिछले साल सितंबर में आयोग के आयुक्त आइवन विलास्क्वेज गोमेज को ग्वाटेमाला में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद से वो देश के बाहर रहकर ही काम संभाल रहे थे। कानूनी कार्रवाई से मुक्ति के विरुद्ध इस आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र और ग्वाटेमाला ने 11 साल पहले आपसी सहयोग से की थी, जिसका उद्देश्य आपराधिक गुटों के खिलाफ स्वतंत्र जाँच करना और कानून के राज को बनाए रखना है। अब तक आयोग ने भ्रष्टाचार में संलिप्त कई राजनीतिज्ञों, अफसरशाहों और कारोबारियों के मामलों को उजागर किया है। नशीले पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मानव तस्करी के पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। हथियारबंद गुट और आतंकवादी पैसा जुटाने और नए सदस्यों की भर्ती के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी कर रहे हैं। अनुमान है कि मानव तस्करी के पीड़ितों में 30% संख्या बच्चों की है। लड़कों की तुलना में लड़कियां तस्करी का शिकार ज्यादा हैं। 142 देशों से जुटाए गए आंकड़ों का अध्ययन करके तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को सैनिक बनाने, जबरन मजदूरी करवाने और यौन दास्ता के मकसद से हो रही मानव तस्करी ने भयावह रूप धारण कर लिया है। युद्ध और हिंसा से ग्रस्त देशों में कानून व्यवस्था के ढह जाने का फायदा हथियारबंद गुट और अपराधी उठा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार तस्करी के मामलों का पता लगाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कई देशों में प्रयासों को मजबूती दी जा रही है, लेकिन जिन देशों को सहायता की जरूरत है उन्हें तकनीकी मदद दी जानी चाहिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए और दोषियों को सजा होनी चाहिए। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। शताब्दी वर्ष के अवसर पर ILO के महानिदेशक गाय राइडर ने अपने संबोधन में कहा है कि असमानता से निपटने के लिए सदस्य देश जो प्रयास कर रहे हैं उसमें संगठन अपना योगदान देता रहेगा। ILO की स्थापना पहले विश्व युद्ध के बाद 1919 में 44 देशों ने मिलकर की थी और उसका उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति सुधारना, अधिकार तय करना और उस समय उपज रहे असंतोष से निपटना था। श्रम संगठन के पुराने मुख्यालय के मुख्य द्वार पर लगी 3 चाबियां प्रतीकात्मक तौर पर 3 पक्षों को प्रदर्शित करती हैं: सरकार, श्रमिक और नियोक्ता या एम्प्लॉयर। दिन में काम के घंटे, वाजिब वेतन का सिद्धांत और घायलों और बीमार कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के अलावा कई अन्य सामाजिक लाभ और कार्यस्थल पर अधिकार वैश्विक पटल पर श्रम संगठन के हस्तक्षेप के बाद ही तय हो पाए थे। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।